नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى
प्यारे बच्चों, हम आपको अपने इस प्यारे से प्रोग्राम नूर वाली किताब इस प्यारे से प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और मरहबा कहते हैं। आपने इस पूरे प्रोग्राम को मुकम्मल देखना है और इत्मीनान से, अच्छे अंदाज से, तवज्जो के साथ देखना है। प्रोग्राम देखना तो आपने शुरू कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आधा प्रोग्राम देख कर आप कहीं और चले जाएं, अपने काम से चले जाएं। आपको पता है कि इस टाइम प्रोग्राम आता है, कौन सा प्रोग्राम?
नूर वाली किताब।
नूर वाली किताब। तो सारे काम एक तरफ, अब बात होगी नूर वाली किताब की, प्यारे प्यारे अल्लाह पाक के कलाम की, जो कि हमारे दिलों का चैन है। दिलों के चैन का मतलब होता है जिसकी वजह से हमें बहुत सुकून मिलता है। जब कोई बहुत प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करता है तो कितना मज़ा आता है ना, सुकून मिलता है। यूँ झूम रहे होते हैं और बा अदब बैठकर, ऐसे बैठ के कुरान पाक की तिलावत हम सुनते भी हैं और सुरूर आता है, ऐसा लगता है अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। और वाकई अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हुआ करती है। तो इस सेगमेंट में जो अब हमारा शुरू होने वाला है, और हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होता है, और उस सेगमेंट के अंदर हम कुरान पाक की तिलावत आपको सुनाते भी हैं। आपने अदब के साथ कुरान पाक की तिलावत सुननी होती है, और इसके साथ साथ हम आपको कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है वो भी बताते हैं। ये भी आपने तवज्जो से सुननी होती है। इससे पहले कि हम अपने तमाम सेगमेंट्स की जानिब बढ़ें, हम सुनते हैं यहाँ पर दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये कहा, जिसने ये कहा, क्या कहा मैं आपको सुनाता हूँ। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलू, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलू। इसकी फजीलत ये है कि जिसने ये पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियाँ लिखते रहेंगे। है ना, कितने कमाल का दुरूद पाक। तो ये आपने पढ़ना है, याद रखना है, पढ़ते रहना है। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पढ़ लेते हैं, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेगमेंट है और उसका नाम है तजवीद क्लास। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद होते हैं, और आज इंशाअल्लाह हमजा भाई हमें सुनाएंगे सूरह इखलास की तिलावत। बहुत सारे बच्चों को ये सूरत याद होती है, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी पढ़ते हैं। तो पहले तिलावत सुनते हैं और फिर देखते हैं कि सही इसको कैसे पढ़ना है। जी हमजा भाई।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم صدق الله العظيم
سبحان الله
سبحان الله
ما ماشاءاللہ ابھی آپ نے سنی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت, یہ رہی سورہ اخلاص. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچے بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد عموماً زیادہ تر لوگ نماز میں یہ سورت بہت پڑھتے ہیں, بہت زیادہ. اور یہ سورہ توحید ہے, بہت پیاری سورت ہے یہ. تو جب نماز میں اسپیشلی اس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے تو صحیح پڑھنا چاہیے. اس میں کیا غلطی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ہے پہلی آیت, یہ ہے پہلی آیت. میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ غلط پڑھنے والے اس پہلی آیت کو کیسے غلط پڑھ دیتے ہیں. یوں پڑھ دیتے ہیں قل ھو اللہ احد, استغفر, کتنا غلط میں نے پڑھ دیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا, میں یہ نہیں پڑھ رہا, میں یہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا. وہ جو پڑھتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں, وہ پڑھتے ہیں قل ھو اللہ احد. کیا انہوں نے یہ پڑھا؟ نہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا پڑھا. اور اگر وہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور گناہ ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے غلط پڑھیں گے تو پھر نماز بھی
نہیں.
ہاں, تو نماز درست کرنے کے لیے قرآن پاک درست کرنا ضروری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, سب سے پہلے یہ ہے قل. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کل نہیں ہے, یہ قل ہے. قل موٹا قاف, یہ رہا موٹا قاف. ایک ہوتا ہے کاف, اسے کہتے ہیں ڈنڈی والا کاف, یہ رکھا ہوا, یہ رہا, یہ رہا, یہ آخر میں, یہ کاف ہے نا, اسے کہتے ہیں ڈنڈی والا کاف. اس کو پڑھتے ہیں باریک. جیسے انگلش, انگلش میں کیو ہوتا ہے نا, کیو, اور ایک کے ہوتا ہے, ایک کیو. جیسے میرا نام کیو سے آتا ہے نا, قربان, تو کیو سے آتا ہے موٹا ہے. اور کے سے بھی آتا ہے, جیسے کبریا, کبریا نام ہے, یہ کے سے آتا ہے, کبریا ساؤنڈ باریک ہے, اور قربان کیو کا ساؤنڈ ہے, موٹا ہے. اسی طرح دیکھیں عربی میں قاف موٹا اور کاف باریک, تو اس کو کل نہیں پڑھتے, کل ھو اللہ, نہیں, غلط. یہ ہے قل, میرے ساتھ پڑھیے قل.
قل
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 قل, بس ٹھیک پڑھ رہے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہے ھو اللہ, ھو پہلے ھو ہے پھر واللہ, پہلے ہو اور پھر میرے ساتھ پڑھیے ہو واللہ, ہو واللہ, ہو واللہ. ہاں واللہ, واللہ ایسے نہیں, بلکہ ہو کو بھی پڑھنا ہے اور واللہ کو بھی پڑھنا ہے. اب میرے ساتھ پڑھیے ہو اللہ,
ہو اللہ,
ہو اللہ,
ہو اللہ.
اچھا کچھ بچے ایسے کر لیتے ہیں کہ اللہ, یہ اللہ پاک کا نام ہے نا, یہ اللہ پاک کا نام ہے نا, تو اللہ پاک کے نام میں اللہ کے لام کو تو پڑھتے ہیں لیکن ہا کو نہیں پڑھتے. قل ھو اللہ لاؤ پڑھ دیتے ہیں, لاؤ ایسے, یا لاؤ, قل ھو اللہ احد لاؤ, یہ نہیں ہے, بلکہ ہا کلیئر کرنا ہے. ہا پڑھتے ہوئے اندر سے ہوا باہر آتی ہے, پڑھیے اللہ, ہوا باہر آ رہی ہے, اللہ ہے نا, آ رہی ہے نا, یہ چیز آپ کی ہوا باہر آنی چاہیے, پھر آپ کا ہاں ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ پڑھیے, شروع سے پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ,
قل ھو اللہ,
قل ھو اللہ,
قل ھو اللہ.
جی ہاں, اس کے بعد یہ ہے احد,
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 احد, احد نہیں, احد کا معنی بہت غلط ہو جائے گا. یہ جو ہا ہے نا, یہ ہا, اس کو ہا ہی پڑھنا ہے, ہا بالکل بھی
نہیں.
ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. احد بچے کر دیتے ہیں اور اس کا معنی چینج ہو جاتے ہیں, بالکل چینج معنی. اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں, پانچ مرتبہ احد پڑھیں گے, بچے بھی پڑھیں گے, آپ نے بھی آواز سے پڑھنا ہے. پڑھیے احد,
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 احد. ماشاء اللہ, اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ سنائیے گا, ان کو مائک دیجیے گا, شاباش, پڑھیے
احد.
کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, دوبارہ
احد.
قرآن پاک مکمل پڑھا ہوا ہے آپ نے, پڑھ رہے ہیں ابھی؟
قرآن نہیں پڑھا
ابھی, قاعدہ پڑھ رہے ہیں. کہاں پہ سبق ہے؟
سات,
سات پہ. دیکھیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ابھی صرف ان کا سبق نمبر سات پہ سبق ہے, لیکن ان کا ہاں کتنا اچھا ہے, انہوں نے بہت ساری پریکٹس کی ہوگی کلاس کے اندر. کچھ بچے مدرسے تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ہاں ٹھیک نہیں ہوتا, پتہ ہے کیوں؟ وہ بس مدرسے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں وہ؟ بس
मदरसे।
इसका मतलब ये है वो सिर्फ मदरसे जाते हैं, मेहनत मेहनत नहीं करते। भाई जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर सही कैसे होंगे? क्लास में तो जाना है लेकिन वहाँ प्रैक्टिस करनी है। जिनका हा अच्छा है, नून अच्छा है, कौफ अच्छा पढ़ता है, उनको कहें मुझे भी सिखाओ। क्या कहें? मुझे भी। तो इंशाल्लाह आप ठीक पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु, अल्लाह पाक के लाम से पहले ज़बर है, अल्लाह पाक के लाम को मोटा पढ़ना है। स्वाद आ गया है, स्वाद उर्फ़ मुस्ताले में से सीटी भी निकालनी है और मोटा भी पढ़ना है। अच्छा कारी साहब पढ़ रहे थे तो मुझे हल्का हल्का ऐसा लगा कि घुन्ना हो गया है, यहाँ पे लम्बे, यहाँ पर भी लम्बे, यहाँ पर भी घुन्ना हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है मीम साकिन। ये क्या है?
मीम साकिन।
आप कहेंगे ये तो मीम है, आप साकिन क्यों कह रहे हैं? मैं मीम को साकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीम के ऊपर क्या है?
जज़्म
है। मीम के ऊपर
जज़्म है।
मीम के ऊपर
जज़्म है।
जब भी किसी हर्फ के ऊपर जज़्म आ जाती है तो उस हर्फ को कहते हैं साकिन। मीम के ऊपर आ गई मीम साकिन, नून के ऊपर आ गई तो नून साकिन, और दाल के ऊपर आ गई तो दाल साकिन, यहाँ लाम के ऊपर आ गई जज़्म तो लाम। प्यारे बच्चों, मीम साकिन के बाद जब बा भी नहीं हो और मीम भी नहीं हो तो उस वक्त गुन्ना बिल्कुल भी
नहीं करना।
देखिए मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद मीम है, गुन्ना भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद मीम है, गुन्ना भी
नहीं का।
यहाँ पर बताइए यहाँ गुन्ना होगा? चले मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ पे गुन्ना होगा या नहीं होगा। किससे पूछूँ, किससे पूछूँ? इनसे पूछता हूँ, इनको माइक दीजिएगा। शाबाश, सीधे हाथ से लिया है, बहुत अच्छी बात। यहाँ मीम साकिन में गुन्ना होगा?
नहीं,
नहीं होगा। कैसे पता चला आपको?
उस पे मीम नहीं है और बा भी नहीं है।
कहाँ पे, कहाँ पे?
लम के बाद।
लम के बाद, ये रहा लम। इसको ऐसे बताते हैं मीम साकिन के बाद। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। मीम साकिन के बाद ना बा है ना मीम है, लिहाजा गुन्ना भी
नहीं
होगा। ये था प्यारे बच्चों आज का सबक, आपने याद रखना है। स्पेशली सूरह इखलास की जो पहली आयत है ना, पहली आयत, उसके बारे में जो मैंने ख़ास बातें बताई हैं, आपकी मश्क करवाई हैं, या आपने मश्क को कंटिन्यू रखना है और मुसलसल इसको करते रहना है, याद रखना है, तो आप सूरह इखलास दुरुस्त पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है कुरानिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, ये जो सेगमेंट है कुरानिक हिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है हम आपको इसमें कुरान की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख़ है, वो आपको बता रहे हैं ना कि कुरान पाक किस तरह जमा हुआ, सहाबा कराम कैसे अहतमाम किया करते थे, वगैरह वगैरह। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात सुनी थी कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर कुरान पाक को जमा करना शुरू कर दिया था, है ना? और उन्होंने एक एतराज़ भी किया था ना, एक सवाल किया था कि ये तो काम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया था कि अल्लाह की कसम इस काम में बेहतरी ही है। और मैंने आपको बताया था कि देखें आज वाकई कितनी खूबसूरत बेहतरी आई कि हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, जो हिफ्ज़ नहीं की हुए है वो भी आराम से अपने पास कुरान पाक को खोल के पूरा कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आराम से एक एक चीज़ को समझ भी सकते हैं, कुरान पाक की बरकतें भी हासिल कर सकते हैं। खैर, कुरान पाक को हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक के मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कुरान पाक जमा हो गया था, सिर्फ सूरह तौबा की जो लास्ट की आयतें थी ना वो सिर्फ एक सहाबी के पास से मिली थी और वो थे हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास से मिली थी। तो ये पूरा का पूरा कुरान पाक जमा हुआ, और ये पता है किस तरह जमा हुआ? हर सूरत एक किताबी शेप में थी। जैसे अभी कुरान पाक है हमारे पास, पूरा का पूरा कुरान पाक एक किताबी शेप में है ना, लेकिन वो हर सूरत एक किताबी शेप में थी, यानी हर सूरत की अलग अलग किताब थी, लेकिन पूरा का पूरा कुरान पाक एक जगह पर जमा हो गया था। ऐसा नहीं था कि एक सूरत किसी के पास लिखी हुई है, दूसरी सूरत किसी और के पास लिखी हुई है, एक आयत कहीं और के किसी और सहाबी के पास है, कोई आयत किसी हड्डी पे लिखी हुई है, कोई आयत किसी पत्ते पे लिखी हुई है, ऐसा नहीं था। सूरत सूरत करके पूरा का पूरा कुरान पाक इकट्ठा करके जमा कर दिया गया। अब ये जो कुरान पाक था ना, ये कुरान पाक खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ही रहा, उनके पास महफूज था, सेफ था। जब तक आप ज़िंदा रहे आपके पास था, जब आपका विसाल हुआ फिर आपके बाद जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, कौन थे इस्लाम के दूसरे खलीफा? जी माशाल्लाह, आपको पता है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, बहुत बहादुर थे ये। फिर इनके पास ये कुरान पाक आ गया। और याद है हम कुरान की हिस्ट्री में हमने ये बात भी सुनी थी कि सबसे पहले कुरान पाक को इस तरह एक बुक शेप में जमा करने का जो मशवरा दिया था वो भी इस्लाम के दूसरे खलीफा ने दिया था ना, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो फिर ये सेकेंड स्टेप में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आ गया। लेकिन फिर आपका भी विसाल हो गया, जब आपका विसाल हुआ तो ये कुरान पाक अब आपकी जो बेटी है ना, आपकी बेटी का नाम है हज़रत हफ्सा। क्या नाम है?
हज़रत हफ्सा,
हफ्सा नाम है। तो इनके पास ये कुरान पाक आ गया। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये पता है कौन है? ये हमारी माँ है, माँ, तमाम मोमिनों की माँ। इनको कहते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक पाक बीवियाँ हैं ना, पाकीज़ा बीवियाँ, वो हमारी माएँ कहलाती हैं। तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हैं, आपकी बीवी हैं, पाक बीवी हैं। तो इस तरह ये हमारी क्या हुई? माँ हुई। तो ये मोमिनों की माँ हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं। तो सेकेंड स्टेप में ये कुरान पाक आपके पास आया और ज़िंदगी भर ये आपके पास ही रहा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये कुरान पाक किसको दिया गया, क्या हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में क्या हुआ, और फिर इस तरह शेप में हमारे पास कैसे आया, कैसे रुकू लगे, कैसे पारे बने, क्या हुआ, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहेंगे। तो आपको पूरी कुरानिक हिस्ट्री इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी। आज के इस सेगमेंट के लिए हम रखते हैं इतना ही। इसी के साथ हमारा सेगमेंट ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है हमारा कुरान।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ रैयान अत्तारी। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीजों के बारे में आपको बताएंगे, कुरान पाक में किन किन चीजों का जिक्र है और फिर इन चीजों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज का जिक्र करने जा रहे हैं वो ऐसा जानवर है जिस पर सवारी की जाती है और वो है खच्चर। इसको अरबी जबान में बगल कहा जाता है। इस जानवर का जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है, आइए इस बारे में भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, तर्जमाए कंजुल इरफान, और उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और ये तुम्हारे लिए जीनत है और अभी मजीद ऐसी चीजें पैदा करेगा जो तुम जानते नहीं। प्यारे बच्चों, खच्चर एक मुबारक सवारी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 खच्चर थे। इनमें से एक खच्चर सफेद भी था जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिला था, जिसका नाम दुलदुल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में और जब मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते तो इस पर सवारी फरमाते थे और इस खच्चर की उम्र भी काफी लंबी हुई। इसके दान टूट गए थे और इसके खाने के लिए जो गिजा दी जाती थी वो इसे कूट कर दी जाती थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी काफी असर तक जिंदा रहा। चुनांचे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान इस पर सवारी फरमाई और आपके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस पर सवारी फरमाई और आपके बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस पर सवारी फरमाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज आपने खच्चर के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
क्या बात है बच्चों, आज आपने खच्चर के बारे में बड़ी मजेदार मजेदार बातें सुन ली हैं। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बहुत सारे खच्चर थे, एक दो नहीं, चार पांच नहीं, पांच से भी ज़्यादा थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवरों का नाम भी रखते थे। एक खच्चर का नाम था दुलदुल। क्या नाम था?
दुलदुल।
यही तो अभी आपने प्रोग्राम में सुना था, इस सेगमेंट में दुलदुल नाम था। इससे मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ना, वो आपने सीखनी है, वो ये कि हमें भी अपने जानवरों के प्यारे प्यारे नाम रखने चाहिए। बच्चे बकरीद में लेके आते हैं ना जानवर, तो बकरीद में भी जानवर लेके आते हैं। कुछ लोग जानवर पालते हैं, उनके प्यारे प्यारे नाम रख लें। किसी का नाम दुलदुल रख लें, किसी का नाम याफूर रख लें, किसी का कोई नाम रख लें, तो नाम रखने चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा तरीका है। अल्लाह पाक से दुआ है, आज जो हमने ये प्यारी सी बात सुनी, इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है एराब पहचान कर लगाएं।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
देखिए यहाँ पर कोई ना कोई लफ्ज लिखा हुआ आएगा, उनमें एराब भी होगा। ये देखें, लाम पर एराब है, ता पर है, शीन पर है, लेकिन हो सकता है किसी एक हर्फ पे या किसी दो हर्फ पे एराब नहीं हो, तो ये आपने तलाश करना है। यानी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जैसे ये है ला तश्तरू। अब आपने तलाश करना है कि इस पे कौन सा हर्फ पे एराब नहीं है और कौन सा आएगा। वो अगर आप सही तलाश कर लेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा और आपको वन पॉइंट मिल जाएगा। जो टीम ज़्यादा एराब और दुरुस्त एराब तलाश कर लेगी तो वो टीम क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। और जो टीम एराब कम तलाश कर सकेगी वो टीम हार जाएगी। लेकिन कोशिश करनी है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है? मुकाबला सख्त होगा फिर। ये है टीम ए और ये है टीम
बी।
टीम ए से कौन आ रहा है? अच्छा हाँ, आप आ जाइए, आपके पास माइक भी है। और टीम बी से आप आएंगे, आप आ जाइए, आ जाइए आप। हाँ ठीक है, माइक थोड़ा आगे रख लें बेटा। करना क्या है, आपने आपने एराब ढूंढ के उठा के दिखाना भी है ना नाजरीन को, ताकि पता चले कि एराब कैसे लगाते हैं, और फिर आप एराब बताएंगे। शुरू करें फिर मुकाबला
जी।
चलें फिर, आपके जज्बे से कह रहे हैं शुरू करें, तो फिर शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है टीम ए के लिए ला तश्तरू। मुझे देखें, मैं लफ्ज़ कैसे पढ़ रहा हूँ, ला तश्तरू। और रन निकाल लिया आपने तो। हाँ ये सही करके दिखाएं, कैसे पकड़ेंगे इसको? अच्छा ऐसे बता रहे हैं आप, कन्फर्म ऐसे ही पकड़ेंगे। अच्छा क्या है ये?
पेश।
पेश है, कहाँ लगेगा? ऊपर नीचे?
ऊपर।
ऊपर दिखाइएगा, कह रहे हैं पेश है और ऊपर लगेगा जी। रॉ के ऊपर एराब नहीं था, यहाँ पर आ गया है, रॉ के ऊपर पेश है और वाकई ऊपर है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है जी। टीम बी के लिए, टीम ए का जवाब तो दुरुस्त हो गया है, टीम बी के लिए कौन सा वर्ड है? कलीलन। कलीलन टीम बी, आपने तलाश करना है कौन सा एराब है और कौन से हर्फ के ऊपर या नीचे लगेगा। हाँ ढूंढ लें, शाबाश। ज़बर भी है, ज़ेर भी है, पेश भी है, तनवीन भी है, निकाल लिया है आपने। क्या है ये?
ज़ेर।
ज़ेर है, कहाँ लगेगा?
लाम के नीचे।
चलें हम देखते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। कह रहे हैं ज़ेर है, नीचे लगेगा, ज़रा दिखाइएगा। जी हाँ ज़ेर है, नीचे लगेगा। टीम बी वालों का भी जवाब दुरुस्त हो गया है, क्या बात है। अब टीम ए के लिए कौन सा लफ्ज़ है? तालमूना। टीम ए, तालमूना, ये कहाँ लगेगा?
पेश मीम के ऊपर।
पेश मीम के ऊपर जी, बताइए पेश है और मीम के ऊपर है? पेश और मीम के ऊपर। मीम के ऊपर एराब नहीं था जी, पेश है और मीम के ऊपर है, जवाब दुरुस्त हो गया है। देखें मैं आपको जज़्म और पेश की एक और बार पहचान करवा देता हूँ। ये है पेश और पेश के बाद ये है जज़्म। देखें दोनों का शेप थोड़ा मिलता जुलता होता है, छोटा सा जब लिखा हुआ होता है ना तो परेशानी हो जाती है। जब आप ये देखें कि गोल सर्कल बना हुआ है, गोल दायरा बना हुआ है, तो आप पहचान जाएं फौरन कि ये क्या है?
पेश।
और अगर दाल की तरह हो ना, दाल, दाल देखा ना यूँ लिखा हुआ होता है दाल, अगर दाल की तरह स्मॉल सा शेप बना हुआ हो, गोल दायरा उसमें नहीं हो, तो फौरन पहचान जाए ये पेश नहीं है बल्कि ये क्या है? जज़्म है, ठीक है। चलें टीम ए के दो जवाब हो गए, टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी के लिए लफ्ज़ है बिल बिर्री। मेरे मेरे अल्फाज को देखें, मेरे होंठों को देखें, आप पहचान जाएंगे मैं क्या लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। बिल बिर्री बताना नहीं है, हाँ तो अच्छी बात नहीं होती, और चुगली भी नहीं लगाते जी।
ज़ेर।
زیر ہے کہاں آئے گا؟
را کے نیچے.
را کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے گا, ہمیں بھی دکھائیے گا. کیا را کے نیچے زیر ہے؟ بل بل ری. جی ہاں, را کے نیچے زیر ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں, کمال کا لفظ ہے نا, باقی نیچے بھی زیر اور ایک اور باقی نیچے بھی زیر اور پھر را کے نیچے بھی زیر ہی زیر. جی ابھی تک تو مقابلہ برابر برابر جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں, آخری سوال کر رہا ہوں میں, آخری لفظ آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. جی ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ تنسونا. تنسونا بہت آسان آ گیا ہے. کیا ہے یہ؟
زبر.
زبر کہاں پر آئے گا؟ نون کے نیچے آئے گا نا.
نون کے اوپر آئے گا.
نہیں نہیں, نون کے نیچے آنا چاہیے. ویسے
اوپر آئے گا.
کنفرم کہہ رہے ہیں آپ؟
جی.
آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نون کے اوپر ہی آئے گا؟
نون کے اوپر ہی آئے گا.
کیوں؟ آپ نیچے لگاتے ہیں
تو زیر ہو جائے گا نا.
اچھا صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نیچے لگانے سے زیر ہو جاتا ہے. جی ہاں, نیچے لگاتے ہیں تو زیر اور اوپر لگاتے ہیں تو
زبر.
لیکن دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. جی ہاں, نون کے اوپر آئے گا اسی لیے زبر ہے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے, آپ کا کانفیڈینس, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے, بالکل کانفیڈینس سے جواب دیں. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی, اب آپ نے بالکل صحیح نکالنا ہے تاکہ مقابلہ کم از کم برابر تو ہو. یہ ہے تعقلونا. تعقلونا کہاں پر آئے گا اعراب؟ کون سے حرف کے اوپر یا نیچے آئے گا؟ یہ آپ نے نکالا ہے, کچھ سائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کیا ہے یہ؟
پیش.
پیش ہے, لام کے نیچے آئے گا نا.
اوپر.
آپ درست ہیں یا نہیں ہیں یہ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے. بتائیے گا, باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, کیا لام کے اوپر پیش ہی آئے گا؟ تعقلونا لام کے اوپر پیش ہی آئے گا اور اس کے ساتھ ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے بھائی, آپ لوگ ہی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے, ماشاء اللہ. ٹیم اے بھی جیت گئی اور ٹیم بی بھی
جیت گئی,
اور جیت ہی جیت میں دونوں نے جیتتے ہوئے ہمیں اعراب سکھا دیے ہیں. تو پیارے بچوں, اسی خوبصورت سے مقابلے کے ساتھ آپ نے سیکھا بھی, اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا, وہ بھی ضرور دیکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب.